آگے سبق دیکھیے بھائی. وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ الْمُفْرَدَةُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا إِنَّمَا قَيَّدَ الْمُنَادَى بِكَوْنِهِ مَبْنِيًّا لِأَنَّ تَوَابِعَ الْمُنَادَى الْمُعْرَبِ تَابِعَةٌ لِلَفْظِهِ فَقَطْ وَقَيَّدْنَا الْمَبْنِيَّ بِكَوْنِهِ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ لأن توابع المستغاث بالألف لا يجوز فيها الرفع. اچھا بھائی, گزشتہ سبق میں منادا کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ منادا مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر. تو دو قیدیں ہیں, مفرد بھی ہونا چاہیے اور معرفہ بھی ہونا چاہیے. مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو, اور معرفہ ہو چاہے قبل ندا معرفہ ہو یا بعد ندا معرفہ ہو. اور پھر ہم نے منادا مستغاث کے بارے میں پڑھا تھا, صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ منادا مستغاث جو ہے اس پر کبھی لام استغاثہ داخل کیا جاتا ہے اور اس لام کی وجہ سے اب اس پر جر آئے گا. بھائی اب یہ جو منادا مفرد معرفہ ہے اب یہ مبنی نہیں, وجہ یہ کہ اس کی جو مشابہت تھی حرف کے ساتھ اب اس پر جب لام جارہ داخل ہوا, اور لام جارہ تو اسم کے خواص میں سے ہے, تو جب اسم کے خاصوں میں سے ایک چیز اس پر داخل ہو گئی تو اس کی وہ جو مشابہت تھی حرف کے ساتھ وہ کمزور پڑ گئی, لہذا اب یہ مبنی نہیں بلکہ اب یہ معرب ہے اور مجرور ہے, کیونکہ اسم کے اندر اصل معرب ہے بھائی. تو جب اس کی مشابہت حرف کے ساتھ کمزور پڑ گئی اور اسم والی جہت قوی ہو گئی تو اسم کی اصل پر عمل کرتے ہوئے یہ معرب ہوگا اور لام کی وجہ سے مجرور ہوگا, جیسے یا لزیدن. اس کے بعد پھر صاحب جامی نے اشکال کیا تھا کہ یہاں پر دو اور لام بھی ہیں, ایک لام تعجب ہے ایک لام تحدید ہے. کسی چیز پر تعجب کے اظہار کے لیے بھی عربی زبان میں لام استعمال کرتے ہیں, جیسے یا لل مائی. کسی مقام پر جہاں پانی ملنے کی امید ہی نہ ہو اور کسی کو بہت زیادہ پانی مل جائے اچانک, تو وہ تعجب کے طور پر کہتا ہے یا لل مائی, یعنی اس پانی پر تعجب ہے یہ کیسا ہے یا یہ کتنا ہے. یا اسی طرح یا لد دواہی, دواہی جمع ہے داہیتن کی اور یہ بڑی مصیبت کو کہتے ہیں. کسی شخص پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں تو وہ تعجب کے طور پر کہتا ہے یا لد دواہی, یعنی ان مصیبتوں پر تو تعجب ہے یہ کتنی زیادہ ہیں. تو یہ لام تعجب ہے یہ بھی منادا کو جر دیتا ہے, یہ منادا پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جر دیتا ہے. اسی طرح ایک لام تحدید بھی ہے, حدد یحدد تحدید کا معنی ہے دھمکی دینا, تو منادا کو جب دھمکی دی جا رہی ہو تو اس وقت اس پر لام داخل کرتے ہیں اور یہ لام تحدید کہلاتا ہے. مثلا یا لزیدن لاقتلنک, تو یا للمائی اور یا لزیدن دونوں یہ جو لام تعجب اور لام تحدید ہیں ان کی وجہ سے بھی منادا مجرور ہوتا ہے. تو صاحب کافیہ نے ان دونوں کو کیوں ذکر نہیں کیا, لام استغاثہ کا تو ذکر کیا اور لام تعجب اور لام تحدید کو ذکر نہیں کیا. تو بعض علماء نے پھر اس کا جواب دیا کہ وجہ یہ کہ جو لام تعجب اور لام تحدید ہے یہ کوئی الگ لام نہیں ہے, یہ وہی لام استغاثہ ہے. لام استغاثہ ہے یعنی اس کے اندر وہ جو ندا دینے والا ہے وہ فریاد کر رہا ہے. مثلا لام تعجب ہے, لام تعجب ہے تو تعجب کرنے والا جو ہے وہ ندا دیتا ہے متعجب منہو کو, یعنی جس پر وہ حیران ہوا ہے, جس پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے, کہ اس کو ندا دیتے ہوئے کہتا ہے مثلا یا لل مائی, پانی پر تعجب کر رہا ہے تو مانا یہ ہے کہ اے پانی میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو حاضر ہو جا تاکہ میں جی بھر کر تجھ پر تعجب کر لوں اور تعجب سے پھر میری جان چھوٹ جائے. تو یہ جو لام تعجب ہے یہ دراصل کیا ہے, لام استغاثہ ہے. اسی طرح لام تحدید بھی یہ حقیقت میں لام استغاثہ ہے, گویا کہ جو محدد ہے یعنی دھمکی دینے والا وہ محدد سے فریاد کرتا ہے. مثلا یا لزیدن لاقتلنک, کہ اے زید میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو حاضر ہو جا تاکہ میں تم سے انتقام لے کر اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کر لوں تاکہ اس غضب اور انتقام سے میری جان چھوٹ جائے. بھائی और फिर इन्होंने ये भी बतलाया आपको कि कभी कभार मुस्तगास के आखिर में अलिफ इस्तगासा आ जाता है, जैसे या जईदा, और इस सूरत में फिर ये मबनी अलल फता होता है, मबनी अलल फता होता है। और कभी फिर इसी के आखिर में हा भी जोड़ देते हैं वक्फ की सूरत में ताकि आवाज लंबी हो जाए, जैसे या जईदाह, देखा आखिर में हा भी जोड़ देते हैं। और इनके अलावा बाकी जो सूरतें हैं यानी मुनादाए मुफरद मारिफा और मुनादाए मुस्तगास, इनके अलावा जो बाकी सूरतें हैं उनमें मुनादा मंसूब होगा, लेकिन ये उस वक्त है जब मुनादा पहले से मबनी ना हो। अगर पहले से मबनी है फिर तो जाहिर सी बात है निदा के बाद भी वह मबनी ही रहेगा। हां अगर पहले से मौरब है तो फिर चूंकि मुनादा मफूल भी ही होता है, या जैदु तकदीर कलाम क्या है, अदऊ जैदन, मैं जैद को पुकार रहा हूं, तो लिहाजा मुनादा मफूल भी ही है और मफूल भी ही मंसूब होता है। तो मुनादा मुफरद मारिफा और मुनादा मुस्तगास के अंदर कोई आरिज पेश आ गया था, कोई मुगैर पेश आ गया था जिसने मुनादा के नसब को बदल दिया था। तो जब मुगैर कोई नहीं होगा तो फिर मुनादा अपनी असल पर मंसूब होगा। इन्होंने क्या बतलाया, मुनादा मुफरद मारिफा हो तो वह मबनी होगा अलामत रफा पर। मुनादा के अंदर तो असल है मंसूब होना, लेकिन यह मुफरद मारिफा होने की वजह से इसकी मुशाबहत किसके साथ आ गई, हर्फ के साथ, और हर्फ तो मबनीउल असल है, तो लिहाजा यह मुनादा भी क्या बन गया, मबनी। तो यह मंसूब होना चाहिए था लेकिन एक मुगैर आया, एक चीज पेश आ गई, उसने इसको नसब से बदल दिया और यह मबनी अल अज़म हुआ। इसी तरह मुनादा मुस्तगास है, वो भी मंसूब होना चाहिए था लेकिन उस पर लाम जार्रा आया, उस लाम जार्रा ने उसको बदल दिया नसब से जर की तरफ। और मुनादा मुस्तगास के आखिर में अगर अलिफ आ जाए तो ये अलिफ अपने से माकबल फतहा चाहता है, लिहाजा इस अलिफ ने इसको बदल दिया। तो ये तीन चीजें बदलने वाली थी मुनादा को, कौन कौन सी, एक तो जब यह मबनी होता है हर्फ के साथ मुशाबहत की वजह से, और वह कब होगा, जब वह मुफरद मारिफा हो, और दूसरा कभी वो मजरूर होता है जब उस पर लाम जार्रा दाखिल हो जाए, और फिर कभी वो मफ्तू होगा जब उसके आखिर में अलिफ इस्तगासा आ जाए। तो इन तीन सूरतों में एक मुगैर आ जाता है, एक आरिज आ जाता है, उस आरिज की वजह से मुनादा पर अब नसब नहीं आ सकता। लेकिन जब ये आरिज कोई भी नहीं होगा तो बाकी तमाम सूरतों में मुनादा मंसूब होगा। तो मुनादा मुफरद मारिफा और मुनादा मुस्तगास के अलावा बाकी सूरतों में मुनादा मंसूब होगा। तो मुनादा मुफरद मारिफा के अलावा कैसे होगा, किसकी बात की इन्होंने, मुनादा मुफरद मारिफा के अलावा, तो लिहाजा उसमें मुफरद होने की भी नफी कर दो और मारिफा की भी नफी कर दो। तो फिर इस सूरत में चार सूरतें बनती थी जो साहिब जामी ने जिक्र की। पहली सूरत क्या भाई, पहली किस्म में दो कैदें थी, मुफरद भी हो और मारिफा भी हो। मुफरद होने का क्या माना, ना मुजाफ हो और ना मुशाबे मुजाफ हो। तो जब मुफरद कहा तो मुजाफ और मुशाबे मुजाफ निकल गए, और जब मारिफा कहा तो नकेरा निकल गया। तो लिहाजा जब मुफरद मारिफा होगा वह मबनी अला जम हो, और जब इसके अलावा हो और इसी तरह मुस्तगास के अलावा हो तो मुनादा मंसूब होगा। तो मुफरद मारिफा के अलावा होने का क्या माना है भाई, मुफरद मारिफा के अलावा होने का माना यह है दोनों शर्तें जिसमें पूरी ना हो, या तो मुफरद की नफी कर दो, पहली किस्म में क्या कैद है, मुनादा मुफरद मारिफा इसके अलावा, यानी गैर मुफरद हो या गैर मारिफा हो या दोनों ही के अलावा हो, यानी ना मुफरद हो और ना मारिफा हो। भाई मुफरद ना हो उसमें दो सूरतें आ गई, मुजाफ होगा या मुशाबे मुजाफ। मुजाफ की मिसाल जिक्र कर दी, या अब्दुल्लाह, अब ये मुनादा है और ये मारिफा भी है लेकिन मुफरद नहीं है, ये मुजाफ है भाई। और या तालिअन जबलन, ए पहाड़ पर चढ़ने वाले, अब देखो ये मुनादा मारिफा तो है, कोई मुअय्यन आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा है आप उसको निदा देते हैं, तो ये मारिफा तो है, मुतअय्यन तो है लेकिन मुफरद नहीं है बल्कि ये मुशाबे मुजाफ है। तीसरी सूरत क्या है कि मुनादा मारिफा ना हो यानी नकेरा हो, जैसे अंधा किसी को आवाज देता है, या रजुलन खुश भी यदि, ए आदमी मेरा हाथ थाम लो। अब देखो अंधा आवाज दे रहा है, वो किसी मुअय्यन को आवाज नहीं देता, वो चाहता है कोई भी आदमी आकर उसका हाथ थाम ले, तो लिहाजा यहां या रजुलन, ये रजुल मुफरत तो है, न मुजाफ है न मुशाबे मुजाफ, लेकिन मारिफा नहीं है बल्कि नकेरा है। और चौथी किस्म की मिसाल इन्होंने जिक्र नहीं की थी, चौथी किस्म जो मुफरत भी ना हो और मारिफा भी ना हो, वो साहिब जामी ने फिर जिक्र कर दी कि या हसनन वजहू जरीफन, या हसनन वजहू जरीफन। ये हसनन जो आया ये मुशाबे मुजाफ है। मुशाबे मुजाफ किसे कहते थे? वो इसम जब तक उसके साथ कोई और लफ्ज न मिलाए उसका माना पूरा नहीं होता। तो यहां पर भी हसन का माना है अच्छा। अब क्या अच्छा भाई? चेहरा अच्छा है या इलम अच्छा है या अखलाक व आदात अच्छे हैं, तो इसका माना पूरा नहीं हो रहा था। आगे वजहू लफ्ज ने आकर इसका माना पूरा कर दिया, ये मालूम हुआ अच्छा चेहरा मुराद है। तो हसनन सिफत मुशब्बा है और वजहू ये इसके लिए फाइल है, क्योंकि सिफत मुशब्बा के लिए भी हमेशा क्या चाहिए? फाइल चाहिए। तो इसलिए यह वजहू मरफू है, फाइल है हसनन के लिए। और नीज ये नकेरा है, दलील उसकी यह है कि आगे जरीफन इसकी सिफत आ रही है और सिफत मौसूफ के मुताबिक होती है तारीफ व तनकीर में। मौसूफ अगर मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा, मौसूफ अगर नकेरा हो तो सिफत भी नकेरा। तो ये हसनन वजहू के बाद जरीफन सिफत ले आए हसनन की, और ये जरीफन तो नकेरा है, इस पर ना अलिफ लाम है ना इसकी इजाफत हो रही है, तो ये नकेरा है। इस जरीफन ने बतला दिया कि हसनन वजहू जो आवाज दी जा रही है ये किसी गैर मुआयन को आवाज दी जा रही है, जैसे अंधा किसी गैर मुआयन को आवाज देते हुए कहता है या रजुलन, इसी तरह या हसनन वजहू ये भी किसी गैर मुआयन को आवाज दी जा रही है। ये किसने बताया? ये जो जरीफन सिफत नकेरा आई, अगर ये हसनन मारिफा होता यानी किसी मुआयन को आवाज दी जाती तो फिर अज जरीफा अलिफ लाम के साथ आना चाहिए था, या हसनन वजहू अज जरीफा। बात समझ में आ रही है? तो या हसनन वजहू, याद रखो यही या हसनन वजहू, अगर किसी मुआयन को आवाज देंगे तो ये मारिफा बन जाएगा और किसी गैर मुआयन को आवाज देंगे तो ये नकेरा है भाई। जैसे वो या रजुल था, या रजुल अगर बीना शख्स जिसको आंखों से दिखाई देता है वो किसी को आवाज देगा, यकीनन वो किसी मुआयन को आवाज देगा, तो फिर जब वो मुतायन है तो या रजुलु, देखो मुफरद भी है क्योंकि ना मुजाफ है ना मुशाबे मुजाफ, और मारिफा भी है क्योंकि मुतायन है, तो लिहाजा या रजुलु कहेंगे। लेकिन यही रजुल का लफ्ज जब अंधा इसके साथ निदा देगा तो कैसे कहेगा? या रजुलन। अब देखो मुफरद ये भी है ना मुजाफ है और ना मुशाबे मुजाफ, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आया कि गैर मुआयन को उसने आवाज दी है तो यह नकेरा है। मालूम हुआ वही रजुल का लफ्ज मुआयन के लिए इस्तेमाल हो निदा के अंदर तो वह मारिफा है, गैर मुआयन के लिए इस्तेमाल हो तो वो नकेरा है। इसी तरह या हसनन वजहू, ए अच्छे चेहरे वाले, ये अगर किसी मुआयन के लिए इस्तेमाल होगा तो यही मारिफा है, और यह किसी गैर मुआयन के लिए इस्तेमाल होगा तो यही नकेरा है। मसलन चार पांच शख्स बैठे हुए, आप उनमें से किसी गैर मुआयन को आवाज देते हैं या हसनन वजहू, ए अच्छे चेहरे वाले, तो यही नकेरा है। आप चाहते हैं कोई भी एक मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, और अगर कोई एक मुतायन है आप उसको आवाज देते हैं या हसनन वजहू, तो फिर इस सूरत में मारिफा है। और ये आगे सिफत बतलाएगी, जरीफन ये सिफत ने बतलाया कि यह हसनन नकेरा है, अगर मारिफा होता तो सिफत क्या लाते? मारिफा लाते, अज़रीफा अलिफ लाम के साथ। तो फिर इश्काल हुआ कि साहिबे काफिया ने यह चौथी किस्म की मिसाल क्यों नहीं जिक्र की? उन्होंने वो मिसाल भी जिक्र की जो मुफरद ना हो, और उसमें फिर दो सूरतें थी, मुफरद ना हो यानी मुजाफ हो, या और मुफरद ना हो या मुशाबे मुजाफ हो, तो दोनों की मिसालें जिक्र कर दी, या अब्दुल्ला और या तालियान जबलन, और जो मारिफा ना हो उसकी भी मिसाल जिक्र कर दी या रजुलन। अब देखो ये मारिफा नहीं है लेकिन मुफरद है, लेकिन वो मिसाल जिक्र नहीं की जो मुफरद भी ना हो और मारिफा भी ना हो, वो साहिब जामी ने जिक्र कर दी, या हसनन वजहू जरीफन। तो सवाल पैदा हुआ साहिब काफिया ने क्यों नहीं जिक्र की? तो साहिब जामी ने उसका भी जवाब दिया था कि भाई जब गैर मुफरद की मिसाल आपको समझ में आ गई जो मुफरद ना हो, गैर मुफरद हो जैसे या अब्दुल्ला और या तालियान जबलन, और गैर मारिफा की भी मिसाल समझ में आ गई जैसे या रजुलन खुशबी यदी, ये भी समझ में आया, तो दोनों को मिलाकर इकट्ठी मिसाल बनाना आपके लिए अब कोई मुश्किल काम नहीं। जो मुफरद भी ना हो और मारिफा भी ना हो, उसकी मिसाल आप बना सकते हैं, जैसे हमने जिक्र कर दिया, या हसनन वजहू जरीफन। एक तो ये वजह, इस वजह से साहिब काफिया ने जिक्र नहीं की कि आपको तरीका आ गया है, अब आप मिसाल खुद भी बना सकते हैं। या कहते हैं इस वजह से जिक्र नहीं की यह मिसाल कि जो या तालियान जबलन आया, इसके अंदर दोनों एहतमाल हैं। यही या तालियान जबलन, तालियान इसमें फाइल है और जबलन ये इसका मफूल भी ही है, ये इसकी सिफत नहीं है। इसमें फाइल फेल जैसा अमल करता है, फेल जैसे फाइल को रफा देते हैं और मफूल को नसब। तालिया देखो ये इसमें फाइल है, ये जबलन इसके लिए मफूल भी ही है। तो ये जो या तालियान जबलन मिसाल जिक्र की साहिब काफिया ने, इसमें दोनों इहतमाल हैं, यानी ये मुअय्यन के लिए भी ये निदा हो सकती है और गैर मुअय्यन के लिए भी। अगर मुअय्यन के लिए मिसाल होगी तो यह मारिफा है, और या तालियान जबलन गैर मुफरद है, मुफरद नहीं है, मुशाबे मुजाफ, तो ये गैर मुफरद हुआ और मारिफा हुआ। और यही निदा अगर किसको दी जाए, गैर मुअय्यन को, तो ये गैर मुफरद भी है क्योंकि मुशाबे मुजाफ है, और गैर मारिफा भी हुआ, तो दोनों सिफतें इसमें मुंतफी हो जाएंगी। फिर यहां पर बड़ा एक पेचीदा एतराज हुआ था भाई, ये जो इबारत आई या रजुलन मकूलन लिगैरी मुअय्यनिन, ये जो लिगैरी मुअय्यनिन आया, इसको रजुल के लिए बाज शारहीन ने सिफत बनाया और बाज ने इसको उसके लिए हाल बनाया है। और सिफत भी कैद होती है मौसूफ के लिए और हाल भी कैद होता है अपने आमिल के लिए, अपने आमिल के लिए कैद होता है। और आमिल यहां क्या होगा, देखो नसब आ रहा है, इन्होंने क्या कहा था, वयुन सब उमा सिवाहुमा, इनके अलावा बाकी सूरतों में मुनादा मनसूब होगा, तो फिर उस मनसूब होने के लिए यह कैद बन जाएगा, मनसूब होने के लिए, और सिफत भी कैद और हाल भी कैद। कैद होने का क्या माना कि यह गैर के इहतेमाल को खत्म कर देता है। जानी रजुलन आलिमुन, मेरे पास ऐसा आदमी आया जो आलिम है, तो देखो रजुलन मौसूफ और आलिमुन सिफत, और यह सिफत मौसूफ के लिए कैद होती है। क्या माना कैद, यानी मौसूफ से गैर के इहतेमाल को खत्म कर देती है। इस रजुल के अंदर गैर आलिम होने का भी इहतेमाल था, लेकिन जब आलिम लफ्ज आया तो इसने गैर आलिम के इहतेमाल को खत्म कर दिया, बतला दिया कि यह रजुल गैर आलिम नहीं है बल्कि आलिम है भाई। इसी तरह हाल जो है वो भी आमिल जुलहाल के लिए कैद होता है, जैसे मसलन मैं कहता हूं जानी जैदुन राकिबन, आया मेरे पास जैद राकिबन सवार होकर। अब ये राकिबन कैद है ये जाआ के लिए, क्योंकि यही इसके अंदर आमिल है, राकिबन के अंदर जाआ ही आमिल है, तो ये उसके लिए कैद है। इस राकिबन ने बतला दिया ये जो मजीअत वाला फेल हुआ है, आने वाला फेल हुआ है, ये सवार होने की हालत में हुआ है, पैदल नहीं हुआ भाई। ये जो जैद का आना था जा अजैदन, इसमें दो इहतमाल थे, हो सकता है पैदल आया हो सकता है सवार होकर आया हो, राकिबन ने आकर पैदल के इहतमाल को खत्म कर दिया। तो यूं कहो हाल भी कैद होता है यानी यह गैर के इहतमाल को खत्म करता है, सिफत भी कैद होती है यह गैर के इहतमाल को खत्म करती है। तो यहां लिगैरी मुअय्यनिन, चाहे आप इसको सिफत बनाओ चाहे आप इसको हाल बनाओ, और हाल और सिफत तो क्या होते हैं कैद, और कैद क्या फायदा देती है, गैर के इहतमाल को खत्म कर देती है। लेकिन या रजुलन, इसके अंदर जो नसब आ रहा है, तवज्जो है, इसके नसब में मुअय्यन के लिए होने का इहतमाल ही नहीं है। यही रजुल, इधर देखिए, एक है या रजुलु, एक है या रजुलन। या रजुलु किसको कहेंगे, मुअय्यन को, और या रजुलन गैर मुअय्यन। तो जब या रजुलन गैर मुअय्यन के लिए है, तो ये जो रजुलन पर नसब आ रहा है ये मुअय्यन के लिए भी कभी हो सकता है, नहीं, मुअय्यन के लिए तो वो मबनी अल जम बन जाएगा या रजुलु। मालूम हुआ या रजुलन में जो नसब आ रहा है वो हमेशा किसके लिए आएगा, गैर मुअय्यन के लिए आएगा, ये मुअय्यन के लिए आ ही नहीं सकता भाई। तो इस रजुल के नसब में मुअय्यन के लिए होने का इहतमाल है नहीं, मुअय्यन के लिए होने का इहतमाल ही नहीं है। तो या रजुलन लि गैरी मुअय्यनिन, लि गैरी मुअय्यनिन या तो ये हाल है या ये सिफत, और हाल और सिफत क्या होते हैं, कैद होते हैं, और कैद क्या फायदा देती है, गैर के इहतमाल को खत्म कर देती है। तो यहां पर तो ये कैद क्या है, लि गैरी मुअय्यनिन, तो यहां तो मुअय्यन का इहतमाल ही नहीं है, गैर मुअय्यन का मुकाबिल क्या, معین, تو یہاں معین کا احتمال ہی نہیں ہے, تو غیر معین کو قید نہ بناؤ بھائی, کیونکہ غیر معین کو کیا بناؤ گے؟ غیر معین کو اگر آپ قید بناؤ گے, قید کیا فائدہ دیتی ہے؟ غیر کے احتمال کو ختم کرتی ہے. تو غیر معین اگر قید ہوئی تو اس نے کس کے احتمال کو ختم کیا؟ معین کے احتمال کو ختم کیا, اور معین کا تو یہاں احتمال ہی نہیں ہے اس نصب کے اندر, یہ نصب تو ہمیشہ غیر معین کے لیے ہی آئے گا, لہذا اس کو قید نہ بناؤ. یہ ہے تو حال یا صفت ہی, لیکن اس کو قید نہ بناؤ بلکہ اس کو توقیت کے لیے بنا لو. کس کے لیے؟ یہ قید نہیں ہے, یعنی یہ صرف وقت بیان کر رہا ہے. یہ رجلن پر نصب کب آئے گا؟ لغیر معین. دیکھو اب وقت والا معنی میں اس کا کروں گا. یا رجلن مقولن لغیر معین, یہ یا رجلن کا لفظ جس وقت غیر معین کو کہا جائے. دیکھو وقت آ گیا, اس کو قید نہ بناؤ. کیوں نہیں بنائیں گے قید؟ کیونکہ یہاں معین کا احتمال ہی نہیں ہے, پھر تو معنی خراب ہو جائے گا. جب ایک چیز کا احتمال ہی نہیں ہے, آپ اس کے احتمال کو ختم کرنے کا کیا معنی؟ قید کس لیے آتی ہے؟ غیر کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے. اور غیر کا احتمال ہی نہیں ہے تو آپ کے اس احتمال کو ختم کرنے کا کیا معنی بھائی؟ تو لہذا جب یہ قید ہوگا تو یہ غیر کے احتمال کو ختم کرے گا, لیکن یہاں تو غیر کا احتمال ہی نہیں, لہذا اس کو قید نہ بناؤ بلکہ کس لیے بناؤ؟ توقیت, یعنی وقت کے لیے بنا دو کہ یہ وقت بیان کرنے کے لیے ہے. ہے تو حال یا صفت ہی, لیکن یہ قید نہیں ہے, یہ صفت یا حال قید نہیں ہے, یہ صرف وقت بیان کر رہا ہے. کس چیز کا وقت؟ رجلن کے نصب کا. رجلن کے نصب کا وقت بیان کر رہا ہے, یہ اس نصب کے لیے قید نہیں, کیونکہ قید ہوگی تو پھر اس کا تو معنی یہ ہے اس نے معین کے احتمال کو ختم کر دیا, پھر تو معنی یہ ہو جائے گا یہ نصب کبھی معین کے لیے بھی آتا ہے, حالانکہ معین کے لیے تو یہ کبھی نصب آتا ہی نہیں. توجہ ہے, میں نے کیا کہا تھا؟ جاءنی رجل عالم, میرے پاس عالم آدمی آیا. اس رجل میں دونوں احتمال تھے, عالم نے آ کر غیر عالم کے احتمال کو ختم کر دیا, لیکن اس رجلن کے نصب میں تو معین کے لیے ہونے کا احتمال ہی نہیں. تو غیر معین کو اگر آپ قید بناؤ گے تو پھر کیا کہنا پڑے گا؟ یہ معین کے احتمال کو ختم کر رہا ہے, اور بھائی اس میں تو معین کا احتمال ہی نہیں, لہذا قید بناؤ گے تو معنی فاسد ہوتا ہے. قید بناؤ گے مانا, لہذا اس کو قید نہ بناؤ بلکہ اس کو کس کے لیے بناؤ؟ وقت کے لیے بناؤ, یعنی توقیت. وقت کا توقیت, توقیت کا معنی کسی چیز کا وقت بیان کرنا. تو یہ اس کو وقت کے لیے بناؤ کہ یہ صفت یا حال ہے لیکن قید نہیں, بلکہ وقت بیان کرنے کے لیے ہے. کس چیز کا وقت بیان کر رہا ہے؟ یہ رجل کے نصب کا وقت بیان کر رہا ہے. بات سمجھ میں آگی کہ رجل پر نصب اس وقت آئے گا جب یہ غیر معین کے لیے ہو. دیکھو اب معنی بہترین ہو گیا یا نہیں؟ بھئی انہوں نے کہا تھا منادا منصوب ہوگا کس وقت؟ کہ ان دونوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منادا منصوب ہوگا. کن دونوں کے علاوہ؟ ایک مفرد معرفہ اور ایک مستغاث, پھر چاہے مستغاث لام کے ساتھ ہو یا مستغاث الف کے ساتھ ہو, تو دونوں اس مستغاث کے اندر آ گئے. تو لہذا ان دونوں کے علاوہ, یعنی منادا مفرد معرفہ اور مستغاث کے علاوہ باقی صورتوں میں منادا منصوب ہوگا. تو مفرد معرفہ کے علاوہ کیسے ہوگا؟ وہ تو صاحب کافیہ نے مثالیں ذکر کر دیں, یا عبداللہ یہ مفرد کے علاوہ ہے, یا طالعان جبلان یہ بھی مفرد کے علاوہ ہے, اور یا رجلان یہ معرفہ کے علاوہ ہے. تو اس کے علاوہ کی تو مثالیں صاحب کافیہ نے ذکر کر دیں, مستغاث کے علاوہ کی مثالیں ذکر نہیں کی, وہ بھی تو ذکر کرنی چاہیے تھیں. تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ بھئی یہ ساری مثالیں مستغاث کے علاوہ ہی کی ہیں. دیکھو ان میں سے کسی مثال کے اندر کسی پر لام جارہ نہیں داخل, اور کسی کے آخر میں الف استغاثہ نہیں. تو یہ مستغاث کے علاوہ کی بھی مثالیں ہو گئیں, اور مفرد معرفہ کے علاوہ کی بھی مثالیں ہو گئیں. اب دیکھیے بھئی آگے آج کا سبق کہتے ہیں, وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ الْمُفْرَدَةُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. اب منادا کے توابع بیان کریں گے. یاد رکھو توابع جمع ہے تابع کی, تابع کی. بھئی ابھی تک جتنی آپ نے قسمیں پڑھیں, کسی لفظ پر رفع آتا ہے, کسی پر نصب آتا ہے, کسی پر جر آتا ہے, تو ان میں عامل براہ راست عمل کرتا ہے. جا انی زیدن, یہ زیدن کیوں مرفوع؟ یہ جا کے لیے فاعل ہے. تو جا نے براہ راست زیدن میں عمل کیا اور اس کو رفع دے دیا. رأیت زیدن, یہ زیدن کیوں منصوب ہے؟ क्योंकि यह मफूल भी ही है। रअयतु फेल ने बराह रास्त इसके अंदर अमल किया और इसको नसब दे दिया। मररतु बि ज़ैदिन, यह ज़ैदिन क्यों मजरूर है? क्योंकि इस पर बा जार्रा दाखिल है, बा जार्रा ने बराह रास्त इसमें अमल किया और इसको जर दे दिया। तो बाज औकात आमिल बराह रास्त अमल करता है एक लफ्ज के अंदर, उसको रफा नसब या जर देता है, और बाज लफ्ज चीजें ऐसी हैं कि आमिल उनमें बराह रास्त अमल नहीं करता, वो अपने से माकबल के ताबे होती हैं। इनके माकबल पर अगर रफा आए तो इन पर भी रफा आता है, माकबल पर नसब आए तो इन पर भी नसब आता है, माकबल पर जर आए तो इन पर भी जर आता है। कुछ चीजें तो वो हैं जिनके अंदर आमिल बराह रास्त अमल करता है और उनको रफा नसब या जर देता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि आमिल बराह रास्त उनमें अमल नहीं करता, वो अपने से माकबल के ताबे होती हैं। माकबल पर जो एराब होता है वही इन पर भी आता है। जैसे सिफत है, सिफत पर वो ही एराब आता है जो मौसूफ पर आता है। सिफत पर जानी रजुलन आलिमुन, ये रजुलन ये मौसूफ है और आलिमुन उसकी सिफत। ये रजुलन पर रफा क्यों आया? क्योंकि ये जा के लिए फाइल है, जा ने बराह रास्त इसमें अमल किया और इसको रफा दिया। और कोई पूछे अगर आपसे कि ये आलिमुन पर क्यों रफा आया, तो अब आप कहेंगे क्योंकि ये सिफत है रजुल की, और सिफत पर वही अराब आता है जो मौसूफ पर, तो मौसूफ मरफू था इसलिए सिफत भी मरफू। अगर मौसूफ मनसूब होता तो सिफत भी मनसूब होती, जैसे रअयतु रजुलन आलिमन, और अगर मौसूफ मजरूर होता तो सिफत भी मजरूर होती, मररतु बि रजुलिन आलिमिन। तो ये सिफत तवाबे में से है। तो ये जो सिफत होती है आमिल बराह रास्त इसमें अमल नहीं करता, ये अपने से माकबल के ताबे होती हैं, यानी अपने मौसूफ के ताबे होती हैं, तो इनको तवाबे कहते हैं। और याद रखना आगे साहिबे काफिया इनको तफसीलन बयान करेंगे। तवाबे याद रखना कुल पांच चीजें हैं भाई। तवाबे नंबर एक तो सिफत है, जैसे अभी मैंने मिसालें जिक्र कर दी, सिफत पर वही अराब आता है जो मौसूफ पर हो, और एक इसी तरह है ताकीद भाई, ताकीद पर वही अराब आता है जो मुअक्कद पर आए। और फिर याद रखना ये ताकीद दो किस्म पर है, एक ताकीद लफ्जी है, एक ताकीद मानवी है। ताकीद लफ्जी ये है कि उसी लफ्ज को आप दोबारा ले आए, जानी रजुलन रजुलन, देखा एक दफा रजुल आया फिर मैं दोबारा उसी रजुल को ले आया, तो ये दूसरा रजुल क्या है? पहले की ताकीद है, और इस पर वही एराब आएगा जो पहले पर आया था। पहला रजुल मरफू था तो दूसरा रजुल भी मरफू है, तो इसको कहते हैं ताकीद लफ्जी, यानी वही लफ्ज दोबारा ले आए। रअयतु ज़ैदन ज़ैदन, देखा एक जैद पहले आया फिर दोबारा जैद लाकर मैंने उसी जैद को पक्का कर दिया। मसलन दूसरी मिसाल ले लो, ज़रबतु ज़ैदन ज़ैदन, मैं अगर सिर्फ यह कहूं ज़रबतु ज़ैदन तो सुनने वाला के जहन में ख्याल आ सकता है कि भाई ज़ैद तो बड़ा ताकतवर आदमी है, उसकी तो कोई पिटाई नहीं कर सकता। मैंने तो क्या कहा, मैं मसलन मैं क्या कहता हूं ज़रबतु ज़ैदन, तो सुनने वाले के जहन में यह वहां आ सकता है ज़ैद तो बड़ा ताकतवर आदमी है, उसकी तो कोई पिटाई नहीं कर सकता। तो या तो ज़ैद को सिर्फ डांटा होगा, कोई बात कही होगी, या पिटाई अमर की है, गलती से जुबान पर ज़ैद का लफ्ज आ गया, सुनने वाले के जहन में यह वहाम आ सकता है, तो मैं दोबारा उसी लफ्ज को दोबारा लाकर उस वहम को खत्म कर देता हूं। जरब तू ज़ैदन ज़ैदन, ये जो दूसरा ज़ैदन मैं लेकर आया इसने पहले ज़ैदन को पक्का कर दिया और बतला दिया कि ये जो ज़ैदन मैंने कहा है ये मैंने गलती से नहीं कहा भाई, ज़ैद बोलकर ज़ैद ही मेरी मुराद है। या जैसे मैं आपसे कहता हूं जा अनी अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन, दो दफा मैं लाया, क्योंकि अगर मैं एक दफा कहता जा अनी अमीरुल मोमिनीन तो सुनने वाले के जहन में आ सकता है कि अमीरुल मोमिनीन तो बहुत बड़ी शख्सियत है और बड़े मसरूफ हैं, वो कहां आए होंगे, उन्होंने कोई अपना सेक्रेटरी वगैरह भेज दिया होगा। लेकिन अमीरुल मोमिनीन का सेक्रेटरी आना भी इसी तरह है जैसे अमीरुल मोमिनीन खुद तशरीफ लाए हों, तो इसलिए कहने वाले ने क्या कह दिया, जानी अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं आए, उनका सेक्रेटरी आया है, लेकिन कहने वाले ने क्या कह दिया, जा अमीरुल मोमिनीन, यानी जब सेक्रेटरी आ गया तो समझो अमीरुल मोमिनीन खुद आ गए, लेकिन मैं दोबारा अमीरुल मोमिनीन लाता हूं, जा अनी अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन, ये दूसरा अमीरुल मोमिनीन जो आया इसने पहले अमीरुल मोमिनीन को पक्का कर दिया और बतला दिया कि अमीरुल मोमिनीन बोलकर अमीरुल मोमिनीन ही मुराद है, कोई और मुराद नहीं है, सेक्रेटरी वगैरह मुराद नहीं है। तो ये जो ताकीद होती है इस पर वही एराब आता है जो मुअक्कद पर हो, जो पहले आए उसको कहते हैं मुअक्कद और जो बाद में आए उसको कहते हैं ताकीद या मुअक्किद भी कहते हैं, मुअक्कद और मुअक्किद भाई। तो ये गलती और मजाज के इहतमाल को खत्म कर देती है ताकीद। और नीस कभी शुमूल का भी फायदा देती है, किस चीज का? शुमूल का भी फायदा देती है, आगे खूब तफसील आ जाएगी भाई जामी के अंदर भी। मसलन मैं आपसे कहता हूं जा अनिल कौम, कौम याद रखो मर्दों की जमात 3 से लेकर 10 तक, उसको कौम कहते हैं। उर्दू वाला कौम नहीं, उर्दू में तर्जमा करेंगे लोग, वो लोग अल कौम वो लोग, मालूम कोई मखसूस जमात मुराद है मर्दों की। तो मसलन मैं आपसे कहता हूं जा अनिल कौम, मेरे पास वो लोग आए, कोई खास जमात जिसकी बात आपके और मेरे दरमियान चल रही थी, तो मैंने क्या कहा जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास आए थे, आए थे। तो सुनने वाले के जहन में ख्याल आ सकता है कि सारे नहीं आए होंगे लेकिन ज्यादातर आ गए, इसलिए क्या कह दिया जा अनिल कौम के। तो आगे मैं फिर ताकीद लाता हूं जा अनिल कौम कुल्लुहुम, मेरे पास वो सारे लोग आए थे। तो इस कुल्लुहुम ने शुमूल का फायदा दिया, इसने बता दिया कि सारे अफराद इसके अंदर शामिल हैं, कोई एक भी बाकी नहीं रहा। जैसे कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाइन, सारों ने सजदा किया था अजमाइन और इकट्ठे किया था एक ही वक्त के अंदर भाई। ये ताकीद है भाई। तो ताकीद देखो दो किस्म की है, एक ताकीद लफ्जी है एक ताकीद मानवी। ताकीद लफ्जी यह है कि उसी लफ्ज को दोबारा जिक्र कर दिया जाए, यह है ताकीद लफ्जी। जैसे जा अनी जैदुन जैदुन रई तो अमीर मोमिनीन अमीर अल मोमिनीन, यह है ताकीद लफ्जी। और ताकीद मानवी कि उसी लफ्ज को दोबारा जिक्र न किया जाए और लफ्ज जिक्र हो लेकिन वो उसी के माना को पक्का कर दे या उसी में शुमूल का फायदा दे दे। जैसे जा अनिल कौम कुल्लुहुम, अब ये कुल्लुहुम अलग लफ्ज है और अल कौम अलग लफ्ज है भाई, लेकिन ये कुल्लुहुम उसी में शुमूल का फायदा दे रहा है कि अल कौम से उसके सारे अफराद मुराद हैं, सिर्फ अक्सर अफराद मुराद नहीं है भाई। इसी तरह जा अनिल कौम अजमाऊना, ये अजमाऊना ये भी ताकीद है, अजमाऊना अबताऊना अकताऊना अबसाऊना, ये कई लफ्ज हैं भाई। तो ये देखो लफ्ज अलग हैं लेकिन उसी में शुमूल का फायदा दे रहे हैं, तो ये सब क्या है ताकीदे मानवी। या दूसरी मिसाल ले लें जा अनी अमीरुल मुमिनीन नफ्सुहू या आइनुहू, नफ्स और आइन का लफ्ज भी ताकीद के लिए ले आते हैं। पहले मैंने क्या कहा था जानी अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन, मैंने 2 दफा अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज जिक्र किया था और इस दूसरे अमीरुल मोमिनीन ने पहले अमीरुल मोमिनीन को पक्का कर दिया कि अमीरुल मोमिनीन बोलकर अमीरुल मोमिनीन ही मुराद है, उनका सेक्रेटरी मुराद नहीं। या दूसरी सूरत यह है कि दोबारा अमीरुल मोमिनीन लाने के बजाय मैं नफ्सुहू का लफ्ज ले आता हूं जानी अमीरुल मोमिनीन नफ्सुहू, मेरे पास अमीरुल मोमिनीन खुद आए थे, नफ्सुहू खुद आए खुद भाई। देखा इसने भी मजाज के इहतेमाल को खत्म कर दिया कि अमीर मोमिनीन बोलकर कोई सेक्रेटरी वगैरह मुराद नहीं है बल्कि वो खुद ही मुराद हैं। तो ताकीद गोया 2 किस्म पर हो गई, एक ताकीदे लफ्जी और एक ताकीदे मानवी। ताकीदे लफ्जी उसी लफ्ज को दोबारा लाया जाए, ताकीदे मानवी के लफ्ज वो ना हो अलबत्ता माना के एतबार से उसी को वो पक्का करे या उसमें शुमूल का फायदा दे। जैसे नफ्स का लफ्ज ले आते हैं, आयन का लफ्ज ले आते हैं, कुल का लफ्ज ले आते हैं, अजमाऊ का लफ्ज ले आते हैं, ये सब क्या है ताकीदे मानवी हैं भाई। तो ये भी तवाबिया में से है। इसी तरह तवाबिया में से मातूफ ब हर्फ भी है, जानी जैदुन व अमरुन। देखा ये वो के जरिए मैंने अमर का आतफ कर दिया जैद पर, तो जो पहले आए वो से पहले आए उसको कहते हैं मातूफ अलै, और जो वो के बाद आए या हर्फ आतफ के बाद आए उसको कहते हैं मातूफ। हुरूफ आतिफा 10 हैं, आप पढ़ चुके हैं भाई, वाव फा सुम्मा वगैरह। तो जा अनी जैदुन व अमरुन, ये जैदुन क्यों मरफू? क्योंकि ये फाइल है, जा अनी इसमें बराह रास्त अमल के इसको रफा दिया। और आगे व अमरुन, ये अमरुन क्यों मरफू है? वजह ये कि ये ताबिअ है, ये मातूफ है जैद पर, तो जैद हुआ मातूफुन आले, और मातूफुन आले पर जो एराब होता है वही मातूफ पर भी होता है। तो जैद पर रफा था तो उसका जो ताबिया है यानी मातूफ उस पर भी रफा है, जानी जैदुन व अमरुन। अगर जैद मंसूब होता तो अमर पर भी नसब आता, रअयतु जैदन व अमरन। और अगर जैद मजरूर होता तो मातूफ पर भी जर आता, मररतु बिजैदिन व अमरिन। तो मातूफ ब हर्फ, ये भी यह भी तवाबे में से है। और चौथी किस्म है तवाबे की बदल बई, जानी जैदुन आखू का, जानी जैदुन आखू का, यह जैद मुबदल मिनहू है और आखू का यह इससे बदल है। मसलन आपका एक भाई है उसका नाम जैद है, तो मैं आपसे क्या कहता हूं, जानी जैदुन, और फिर साथ ही आगे कहता हूं आखू का, मेरे पास जैद यानी आपका भाई आया था, मेरे पास जैद यानी आपका भाई आया था। तो ये जैद है मुबदल मिनहू और अखू का ये है बदल, और बदल पर वही अराब आता है जो मुबदल मिनहू पर होता है, जो पहले आए उसको कहते हैं मुबदल मिनहू। तो जैदुन ये है मुबदल मिनहू और ये मरफू है। तो अखू का देखो, अखू ये अस्माए सिता मुकब्बरा मुआहदा मुजाफा इला गैरियाइल मुतकल्लिम है, इसका रफा वाव के साथ आता है और ये वाव के साथ है। अगर जैद मंसूब होता, रअईतु ज़ैदन आखा का, मररतु बि ज़ैदिन आखी का, तो देखो ये बदल भी तवाबे में से है, बदल पर वही अराब आता है जो इसके मतबू यानी मुबदल मिनहू पर हो। और तवाबे में से पांचवी किस्म जो है वो है अत्फ बयान भाई। अत्फ बयान ये भी ताबे होता है, ये अपने मातूफुन अलैह की वजाहत करता है। ये क्या करता है, मातूफुन आले, अत्फ बयान में जो पहले आए उसको कहते हैं मातूफुन आले और जो बाद में आए उसको कहते हैं अत्फ बयान। और यहां कोई हर्फ वगैरह बीच में नहीं होता, एक वो मातूफ बहर्फ था जिसमें हर्फ बीच में आता है, जानी जैदुन व अमरुन, और यहां अतफ तो होता है लेकिन हर्फ दरमियान में नहीं होता। और नीज ये अतफ भी किस लिए होता है, यह माकबल को बयान करता है, उसकी वजाहत करता है, इसलिए इसको अत्फ बयान कहते हैं। मसलन मसलन आपके दो साथी हैं, दो साथी हैं, उनमें से हर एक की कुनियत अबुल खैर है। तो अगर मैं सिर्फ यह कहूं जा अनी अबुल खैर, आपको कुछ पता चला कौन सा वाला अबुल खैर मुराद है, नहीं फिर पता नहीं चलेगा। तो आगे फिर मैं वजाहत के लिए एक और लफ्ज भी ले आता हूं, जा अनी अबुल खैरी जैदुन, जानी अबुल खैरी जैद, अब आपको पता चल गया अच्छा वो वाला अबुल खैर मुराद है जिसका नाम जैद है भाई। मसलन एक का नाम जैद है और एक का नाम अमर है, लेकिन कुनियत दोनों की क्या है, अबुल खैर है। तो मैंने क्या कहा, जानी अबुल खैर, अब आपको पता नहीं चला कौन सा वाला अबुल खैर आया, वो जो जैद है वो आया या अमर है वो आया। आगे फिर मैं नाम भी ले आता हूं, जानी अबुल खैरी जैदुन, इस जैद ने आकर अबुल खैर की वजाहत कर दी कि कौन सा अबुल खैर मुराद है, वो जो जैद है, वो जो अमर है वो मुराद नहीं। तो इसको कहते हैं अत्फ बयान, इसको क्या कहते हैं, देखो आतफ किया जा रहा है माकबल वाले पर और दरमियान में कोई हर्फ आतफ भी नहीं, और नीज ये मातूफुन अलैह का बयान कर रहा है कि अबुल खैर से कौन मुराद है, जैद मुराद है, वो अमर मुराद नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, आतफे बयान। बात समझ में आ गई। तवाबे कितने हैं, पांच तवाबे पांच हैं। नंबर एक सिफत, नंबर दो ताकीद है, और ये दो किस्म पर है, कभी लफ्जी होगी और कभी मानवी, और नंबर तीन, नंबर तीन मातूफ बहर्फ है, नंबर चार बदल है, बदल है ये तवाबे में से, और नंबर पांच अत्फे बयान। ये जो तवाबे हैं इनमें आमिल बराह रास्त अमल नहीं करता, ये अपने माकबल के ताबे होते हैं। माकबल पर रफा तो इन पर भी रफा, माकबल पर नसब तो इन पर भी नसब, माकबल पर जर तो इन पर भी जर आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब इन तवाबे का बयान करने लगे हैं। याद रखो ये जो तवाबे है ना, तवाबे इस वक्त देखो ये बहस मनसूबात की बहस हम पढ़ रहे हैं, पहले मरफूआत की बहस हमने पढ़ी, अब मनसूबात पढ़ रहे हैं, आगे मजरूरात की बहस आएगी, और फिर उसके बाद बाकायदा तवाबे को तफसील के साथ साहिब काफिया जिक्र करेंगे और इन पांचों में से हर एक की खूब तफसील बयान करेंगे। तो सवाल पैदा होता है जब तवाबे की वहां आखिर में जाकर तफसील बयान कर रहे हैं तो फिर यहां पर मुनादा के तवाबे को जिक्र करने की क्या जरूरत थी, तवाबे का तो आगे बयान आ रहा है। तो वजह यह कि जो मुनादा के तवाबे हैं ये बाकी तवाबे से थोड़े से मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनको यहीं पर बयान कर दिया। बाकी वहां वो आम जितने तवाबे हैं सबको वहां बयान करेंगे, लेकिन मुनादा के तवाबे जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मसलन आपको बताएंगे या जैद, ये देखो मुनादा है, मुफरद मारिफा है और मबनी है अलामत रफा पर, या जैद अब इस जैद की मैं सिफत लाना चाहता हूं अल आकिल, तो इसकी सिफत दो तरह आप ला सकते हैं, या जैदुल आकिलो, देखो सिफत पर भी रफा पड़ा, या जैदुल आकिलो, और इस पर नसब भी पढ़ सकता हूं मैं, या जैदुल आकिला। बात समझ में आ गई? तो देखो मुनादा के अंदर सिफत पर दो तरह के एराब आ रहे हैं, या जैदुल आकिलो भी पढ़ सकते हैं और या जैदुल आकिला भी पढ़ सकते हैं, तो बाकी तवाबिया में इस तरह नहीं है भाई। लिहाजा इसलिए चूंकि ये मुनादा के तवाबिया का हुक्म थोड़ा सा मुख्तलिफ था, कुछ चीजें इनके साथ खास थी, तो मुनादा की जब बहस आई तो यहीं पर साहिब काफिया ने उनको जिक्र भी कर दिया। बात समझ में आ गई? अब जरा पहले मतन मतन सिर्फ देख लो। कहते हैं व तवाब उल मुनाद अल मबनी इल मुफरदतु मीनत ताकीदी व सिफती व अत्फिल बयानी वल मातूफी बि हर्फिन इल मुमतनी दुखूलु या अलैहि तुरफउ अला लफ्जिही व तुनसबु अला महलिही मिस्लु या जैदुल आकिलु वल आकिला। जी मतन मिल गया सारा? देखो व तवाब उल मुनाद अल मबनी, ये अल मबनी याद रखो ये सिफत है मुनादा की, इनको पढ़ना कैसे है समझ लो इसको अच्छी तरह। अल मबनी सिफत है मुनादा की और मुनादा मुजाफुन इले है तवाब के लिए, और मुजाफिले क्या होता है मजरूर, तो इसलिए अल मबनी ये इसको मजरूर पढ़ेंगे क्योंकि सिफत पर वही अराब आता है जो मौसूफ पर आए। आगे आ रहा है अल मुफरदतु, ये अल मुफरदतु सिफत है तवाबिया की, किसकी? और तवाबे उल मुनादा, देखो तवाबिया मरफू है, तवाबे मरफू है और तवाबिया इसकी इजाफत हो रही है अल मुनादा यानी मारिफा की तरफ, और नकिरा की इजाफत जब मारिफा की तरफ हो जाए तो वो भी क्या बन जाता है मारिफा, तो तवाबे मारिफा बन गया है इजाफत की वजह से, इसीलिए इसकी सिफत अल मुफरदतु मारिफा लेकर आए, और तवाबे मरफू था तो अल मुफरदतु भी मरफू पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? व तवाबे उल मुनादल मबनी यिल मुफरदतु। बात समझ में आ गई? तर्जमा कैसे करेंगे? मुनादाए मबनी के वो तवाबे जो मुफरद होते हैं। तर्जमा समझ में आ रहा है? मुनादाए मबनी के वो तवाबे जो मुफरद होते हैं, मीनत ताकीद यानी के ताकीद, ये मीन बयान के लिए है, वो तवाबे का बयान आ गया यानी के ताकीद। भाई देखिए ये जो हरूफ निदा हैं ये आलाय तारीफ हैं, ये जिस लफ्ज पर दाखिल होते हैं उसको मारिफा बना देते हैं। जैसे या रजुलु, देखो रजुल नकेरा था, न इस पर अलिफ्लाम है न इसकी इजाफत हो रही है, लेकिन या हर्फ निदा इस पर आया इसने इसको मारिफा बना दिया, या रजुलो। और इसी तरह अलिफ्लाम जो है वो भी आलाय तारीफ है, जिस लफ्ज पर अलिफ्लाम दाखिल हो जाए ये उसको मारिफा बना देता है। इसी तरह ये जो हरूफ निदा हैं ये भी आलाय तारीफ हैं, ये जिस लफ्ज पर दाखिल होते हैं उसको मारिफा बना देते हैं, बशर्ते के मुअय्यन का इरादा हो। किसी मुअय्यन आदमी को निदा दे रहे हैं आप तो फिर कहेंगे या रजुलो, और अगर वो मुतअय्यन ही नहीं है जिसको आप निदा दे रहे हैं तो फिर वो नकिरा का नकिरा ही रहेगा। जैसे या रजुलन, अंधा कहता है या रजुलन खुजबी यदी, तो मालूम हुआ अलिफ लाम भी क्या है आलाय तारीफ, और ये हुरूफ निदा भी क्या है आलाय तारीफ। तो याद रखना ये जो तारीफ के दो आले हैं ये इकट्ठे नहीं होते, जिस लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल हो उस पर हर्फ निदा दाखिल नहीं हो सकता। जैसे अर रजुलु, अर रजुल पर अलिफ लाम दाखिल है, अब आप इसको निदा देना चाहते हैं और इस पर या को या कोई और हर्फ निदा दाखिल करना चाहते हैं, नहीं दाखिल कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पर एक आलाय तारीफ अलिफ्लाम पहले ही दाखिल है, लिहाजा अब दूसरा आलाय तारीफ इस पर यानी या वगैरह दाखिल नहीं कर सकते। तो फिर कैसे निदा देंगे भाई मुअर्रफ बिल लाम को? कहते हैं फिर उसके लिए दरमियान में मुजक्कर के लिए अय्युहा और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा ले आते हैं। अर रजुल को मैं निदा देना चाहता हूं तो दरमियान में अय्युहा ले आऊंगा, या अय्युहर रजुलो। इसी तरह औरत है तो अब मैं अय्यतुहा दरमियान में ले आऊंगा, या अय्यतुहल मरअतु। बात समझ में आ रही है? तो मुअर्रफ बिल लाम जो मुनादा हो उस पर हरूफ निदा दाखिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं दाखिल हो सकते? क्योंकि हरूफ निदा भी आलाए तारीफ हैं, ये लफ्ज को मारिफा बना देते हैं, और अलिफ लाम भी आलाए तारीफ है, वो लफ्ज को मारिफा बना देता है। तो एक ही लफ्ज पर दो आलातैन तारीफ जमा हो जाएं, ये दुरुस्त नहीं। हां, सिर्फ लफ्ज अल्लाह की खसूसियत है, या अल्लाह, यहां पर अलिफ लाम भी है, फिर भी इस पर हर्फ निदा या दाखिल हो जाता है। ये पूरे कलाम अरब में ये सिर्फ लफ्ज अल्लाह की खसूसियत है। भाई देखिए, तवाबिया पांच हैं, लेकिन उनको तकसीम करके साहिब काफिया उनकी छह सूरतें बना देंगे। वैसे तवाबिया कितने? पांच। छह किस्में उनकी बना देंगे, छह किस्में। तो अब साहिब काफिया इसकी छह किस्में किस तरह बनाएंगे? इधर देखिए भाई, छह किस्में। ये जो मातूफ बा हर्फ है, इसकी दो किस्में बना देंगे। मातूफ बा हर्फ, जैसे जानी जैदुन व अमरुन, या अमरुन का अतफ किस पर है? जैद पर है, और किसके जरिए है? हर्फ के जरिए है। इसकी वो दो किस्में बनाएंगे। एक वो मातूफ होगा जिस पर अलिफ लाम दाखिल होगा, एक वो मातूफ है जिस पर अलिफ लाम नहीं होगा। जैसे या जैदु, इस पर मैं अतफ करता हूं अमर का, या जैदु व अमरु, तवज्जो है, या जैदु व अमरु, और अमर पर अलिफ लाम है नहीं। और एक सूरत है कि ये मातूफ व हर्फ जो है इस पर अलिफ लाम भी हो, जैसे या जैदु वल हारिसु, या जैदु वल हारिसु, या यूं कहो या जैदु वल हसनु। तो देखो, अब मातूफ पर अलिफ लाम दाखिल है। तो ये जो मातूफ बहर्फ है, ये दो किस्म पर है। एक वो मातूफ बहर्फ है जिस पर हर्फ निदा दाखिल नहीं हो सकता, और एक वो है जिस पर हर्फ निदा दाखिल हो सकता है। तवज्जो है, अभी मैंने आपको बताया, जिस लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल हो उस पर हर्फ निदा दाखिल नहीं हो सकता। तो आगे मातूफुन अलै की बात मैं नहीं कर रहा, या जैदु, ये जैद क्या है? मातूफुन अलै। आगे मैं क्या लाना चाहता हूं? मातूफ हर्फ के जरिए, वो जो मातूफ है उस पर अलिफ लाम होगा या अलिफ लाम नहीं? अगर अलिफ लाम नहीं है, मालूम हुआ उस पर या का दाखिल करना जायज है, या का, यानी बराह रास्त उस पर या को दाखिल कर सकते हैं आप। और अगर उस पर अलिफ लाम है, मालूम हुआ उस पर बराह रास्त या का दाखिल करना जायज नहीं। या जैदु व अमरु, या अमर पर या दाखिल हो सकती है या नहीं? अमर को मैं निदा देना चाहूं, या अमरु, मैं या दाखिल कर सकता हूं क्योंकि उस पर अलिफ लाम नहीं है। और दूसरी सूरत है या जैदु वल हारिसु, या यूं कहें या जैदु वल हसनु। अब अल हसन पर मैं या दाखिल करना चाहता हूं, अल हसन पर बराह रास्त या दाखिल हो सकती है? नहीं, क्योंकि अल हसन पर अलिफ लाम है, तो मुझे या अयुहल हसन कहना पड़ेगा। मालूम हुआ मातूफ ब हर्फ दो किस्म के हो गए, कुछ पर अलिफ लाम होगा, कुछ पर अलिफ लाम नहीं। जिन पर अलिफ लाम नहीं, उन पर या का बराह रास्त दाखिल करना जायज, और जिन पर अलिफ लाम है उन पर हर्फ निदा का बराह रास्त दाखिल करना जायज नहीं है। मातूफ ब हर्फ दो किस्म पर हो गए, कुछ वो हैं जिन पर या का दाखिल करना मुमतनिया है, और कुछ ये हैं जिन पर या का दाखिल करना मुमतनिया नहीं है। तो ये दो किस्म के हो गए। तो कुल अब छह किस्में बन गई तवाबिया की। कौन कौन से? नंबर एक सिफत है, नंबर दो अथ, कोई भी बना लो, नंबर एक सिफत है, नंबर दो अथवे बयान, नंबर तीन बदल है, नंबर चार ताकीद है, और नंबर पांच मातूफ ब हर्फ। उसकी दो किस्में बन गई, एक वो जिस पर या का दाखिल करना जायज है, एक वो जिस पर या का दाखिल करना जायज नहीं। तो वो दो किस्में और चार, ये कुल कितनी किस्में हो गई? छह किस्में बन गई। भाई बात समझ में आ गई। और फिर मजीद याद रखना कि इन छह के फिर साहिब काफिया दो हिस्से कर देंगे। छह में से चार का हुक्म अलग है और दो का हुक्म अलग है। कौन से दो हैं जिनका हुक्म अलग है? याद रखो, वो एक बदल है और एक वो मातूफ ब हर्फ जिस पर या का दाखिल करना मुमतनिया नहीं है, यानी जायज है, उसका हुक्म अलग होगा। याद रखो, ये जो बदल और मातूफ ब हर्फ होते हैं ना, ये तकरार आमिल के दर्जे में होते हैं। तवज्जो है, बदल और मातूफ ब हर्फ, बदल और मातूफ ब हर्फ, चाहे कोई भी मातूफ ब हर्फ हो, चाहे उस पर अलिफ लाम हो या ना हो, बात समझ, जो भी मातूफ बा हर्फ हो तो मातूफ बा हर्फ और बदल ये तकरार आमिल के दर्जे में होते हैं, गोया इन पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि दरअसल ये मकसूद होते हैं, ये दो तवाबे मकसूद होते हैं जबकि बाकी तवाबे गैर मकसूद होते हैं। कैसे? देखो मैंने कहा जानी जैदुनिल आलिमो, जैदुन मौसूफ अल आलिमो उसकी सिफत। मुझे बताइए कलाम के अंदर असल मकसूद मौसूफ होता है या उसकी सिफत मकसूद होती है? मौसूफ मकसूद होता है, सिफत मकसूद नहीं। ये एक ताबिया। दूसरा ताबिया मुअक्कद और ताकीद, जा अनिल कौम कुल्लुहुम, वो सब लोग मेरे पास आए। मुझे बताइए मुअक्कद मकसूद है या ताकीद मकसूद है? मुअक्कद जो होता है वो मकसूद होता है। उसके बाद अतफ बयान आया, जा अनी अबुल खैरी जैदुन, इसमें भी याद रखो ये जो मातूफुन अले है ये मकसूद होता है। ये अतफ बयान सिर्फ आकर उसको बयान करता है, उसकी वजाहत करता है। भाई मौसूफ सिफत में से मकसूद कौन? मौसूफ। मुअक्कद ताकीद में से मकसूद कौन? मुअक्कद। और मातूफुन आले और अतफ बयान में से मकसूद कौन? मातूफुन आले। तो ये जो तीन किस्में हैं तवाबिया की, कौन कौन सी? सिफत, सिफत ताकीद और अतफ बयान, ये मकसूद नहीं होते बल्कि मतबू जो होता है वह मकसूद होता है। जबकि बदल और मातूफ ब हर्फ ये दोनों मकसूद होते हैं। बदल की मिसाल मैंने क्या जिक्र की? जानी जैदुन अखू का, जैदुन मुबदल मिनहू और अखू का बदल। याद रखो बदल और मुबदल मिनहू दोनों का मदलूल एक होता है। बदल की और भी किस्में हैं लेकिन यहां सिर्फ बदलुल कुल समझ लें, बदलुल कुल इसे कहते हैं। बदल और मुबदल मिनहू दोनों का मदलूल एक होता है, दोनों एक ही चीज पर दलालत करते हैं। जानी जैदुन अखू का, जैदुन से जो जात मुराद है, अखू का इससे भी वही जात मुराद है। भाई आपका भाई है उसका नाम जैद है तो अखू का कह लूं तो भी आपके जहन में वही उसी का तस्वुर आएगा, और जैदुन कह दूं तो भी उसी का तस्वुर आपके जहन में आएगा। तो देखो जैद का मदलूल भी वही जात, अखूका का मदलूल भी वही जात। तो ये जो बदल और मुबदल बिन हु होते हैं यानी बदलुल कुल में, इन दोनों का मदलूल एक ही जात होती है। और इनमें से याद रखो ये जो पहले मुबदल मिनहू है ये मकसूद नहीं होता, बदल मकसूद होता है। मुबदल मिनहू को वैसे ही बतौर तमहीद के जिक्र कर दिया जाता है, मुबदल मिनहू को वैसे ही तमहीद के तौर पर जिक्र कर दिया जाता है। असल मकसूद कौन होता है? बदल। जानी जैदुन अखू का, जैदुन है मुबदल मिनहू और अखू का यह है बदल, और दोनों में से मकसूद कौन? बदल, यानी अखू का यह मकसूद है। मैं आपको कहना चाहता था जानी अखू का, यह मकसूद था। जैद को वैसे ही मैं तमहीद के तौर पर साथ ले आया, जानी जैदुन अखू का। तो बदल और मुबदल मिनहू में से मकसूद कौन? बदल मकसूद होता है, मुबदल मिनहू मकसूद नहीं। यानी यहां मतबू नहीं मकसूद बल्कि ताबिया मकसूद है। सिफत में मतबू मकसूद था, ताकीद में मतबू मकसूद था, अच्छे बयान में मतबू मकसूद था, लेकिन बदल में ताबिया जो बदल खुद है वो मकसूद है। और पांचवी किस्म है मातूफ बा हर्फ, जानी जैदुन व अमरुन, यहां पर दोनों मकसूद होते हैं, मातूफुन अलैह भी मकसूद होता है और मातूफ भी मकसूद होता है। जानी जैदुन व अमरुन, जैदुन है मातूफुन अलैह वो भी मकसूद है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जैद भी आया था वह अमरुन, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमर भी आया था। तो मातूफ व हर्फ में दोनों मकसूद होते हैं। बात समझ में आ गई? फिर दोहराओ जल्दी जल्दी भाई। सिफत और मौसूफ में से मौसूफ मकसूद होता है, और ताकीद और मुअक्कद में से मुअक्कद मकसूद होता है, और मातूफुन अलैह और अतफ बयान में से मातूफुन अलैह मकसूद होता है, और बदल और मुबदल मिनहू में बदल मकसूद होता है यानी ताबे मकसूद होता है, और मातूफ बा हर्फ में दोनों मकसूद होते हैं, दोनों मकसूद होते हैं। मालूम हुआ कि ये जो बदल और मातूफ बा हर्फ है ये दोनों मकसूद हैं, जबकि सिफत अच्छे बयान और ताकीद मकसूद नहीं। तो ये जो बदल है और मातूफ बा हर्फ है याद रखो ये दोनों मकसूद हैं। जब ये मकसूद हैं तो ये तकरार आमिल के दर्जे में हैं। ये किसके दर्जे में? तकरार आमिल के दर्जे में है, गोया इन पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है, क्योंकि ये तो मकसूद है भाई। मसलन जानी जैदुन अखू का, तो इसके अंदर देखो ये अखू का क्या है, बदल, और बदल तकरार आमिल के दर्जे में होता है, गोया इस पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है। और आमिल क्या है, पीछे किसने अमल किया है, जा ने, जा जैदुन अखू का, ये जा आमिल है और जैदुन मुबदल मिन हु और अखू का बदल, और ये बदल तकरार आमिल के दर्जे में है क्योंकि ये मकसूद है, गोया इस पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है। गोया तकदीर कलाम यूं है, जा जैदुन जा अखू का, जा जैदुन जा अखू का, तकरार आमिल का माना समझ में आया भाई। लफ्जों में तो तकरार आमिल नहीं है लेकिन चूंकि वो मकसूद है तो गोया उस पर फिर दोबारा आमिल दाखिल हो रहा है। तो जा जैदुन अखू का ये किस माना में हुआ, तकदीर कलाम क्या हुई, जा जैदुन जा अखू का, दोबारा उसके लिए जा यानी आमिल को दोबारा ले आएंगे। ये तरीका समझ में आ गया। इसी तरह मातूफ व हर्फ जो है वो भी तकरार आमिल के दर्जे में होता है, जा जैदुन व अमरुन, जा जैदुन व अमरुन, तो इस ये भी तकरार आमिल के दर्जे में है। ये इसमें ये जो हर्फ आतफ होता है ये उस आमिल का नाइब होता है। तवज्जो से सुनो, जा जैदुन व अमरुन, ये अमरुन का आतफ किस पर है, जैद पर है, और ये अमर खुद भी मकसूद है, ये भी मकसूद है, जैद भी मकसूद, मातूफुन आले भी मकसूद और हमर भी मकसूद, और जब ये मकसूद है तो ये तकरार आमिल के दर्जे में है, गोया आमिल इस पर दोबारा दाखिल हो रहा है। और ये जो बीच में हर्फ आया वाओ, ये उस आमिल का नाइब है। ये क्या है, ये उस आमिल का नाइब है, जा जैदुन व अमरुन, जैदुन में आमिल कौन, जा, तो ये वाओ उसी जा का नाइब है। फिर सुनो, जा जैदुन व अमरुन, देखो ये जैद है मातूफुन आले और अमर क्या है, मातूफ, और मातूफ भी मकसूद होता है, तो ये भी तकरार आमिल के दर्जे में है, गोया इस पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है। और यहां आमिल क्या है, किसने रफा दिया था जैद को, जा ने, किसने, जा ने, तो याद रखो ये जो हर्फ अतफ होता है ये उसी आमिल का नाइब होता है। ये किसका नाइब है, जा जैदुन व अमरुन, ये जरा अपने सामने कॉपी पर लिखें भाई, जा जैदुन व अमरुन, जा जैदुन व अमरुन। अब इस जुमले पे जरा नजर रखें भाई, जा जैदुन व अमरुन, देखो ये अमरुन क्या है, मातूफ बा हर्फ है, और जैद क्या है, मातूफुन आले, और मातूफुन आले पर जो एराब है वही मातूफ पर भी एराब आता है, और यहां मातूफुन आले मरफू है, इसको रफा किसने दिया, जा फेल ने दिया, जा फेल ने दिया। तो याद रखो ये जो मातूफ बहर्फ है ये तकरार आमिल के दर्जे में है, गोया इस पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है। और ये जो हर्फ अतफ है बीच में, ये जो वो आ रहा है ये उस आमिल का नाइब है, ये उस आमिल का नाइब है। गोया असल कलाम कैसे है, जा जैदुन जा आमरुन, ये वो को हटाएं, इसकी जगह क्या ले आए, उस आमिल को दोबारा ले आए, ये वो उसका नाइब था, जा अजैदुन जा आमरुन। तो देखो तकरार आमिल है। बात समझ में आ गई कि बदल और मातूफ बहर्फ ये दोनों चूंकि मकसूद होते हैं लिहाजा ये तकरार आमिल के दर्जे में है, यानी गोया इन पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो बात चल रही थी कि तवाबे पांच हैं, उन पांच में से फिर जो मातूफ ब हर्फ था उसकी दो किस्में बना लें, कितनी किस्में, एक वो जिस पर या का दाखिल करना जायज है, एक वो जिस पर या का दाखिल करना जायज नहीं। ये मिसाल जरा अपने सामने लिखें भाई, या जैदु व अमरु, या जैदु व अमरु। अब देखो ये अमर का आतफ है किस पर, जैद पर, और जैद मबनी अला जम है, और इसी तरह ये अमर जो है ये भी मबनी अला जम है, इसलिए क्योंकि ये अमर ये मातूफ बहर्फ है और इस पर या का दाखिल करना जायज है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम नहीं, अलिफ लाम होता तो फिर तो या का दाखिल करना जायज ना होता। तवज्जो है, तो ये वो किसका कायम मकाम है, या का, या का। तो गोया कलाम यूं है, या जैदु या अमरु, तवज्जो है, और अमर पर या दाखिल हो सकती है या नहीं, या दाखिल हो सकती है। तो लिहाजा जैसे जैद मबनी अलज़म था, ये जो मातूफ बहर्फ है ये भी मबनी अलज़म होगा, यानी गोया इस पर वो या दोबारा दाखिल हो रही है। दूसरी मिसाल लिखें, या जैदो वल हसनो, या जैदो वल हसनो, लिख लिया भाई, या जैद वल हसनो। अब देखो ये अल हसन का आतफ है किस पर, जैद पर, जैद पर, और ये मातूफ बहर्फ है, और मातूफ बहर्फ तकरार आमिल के दर्जे में होता है, गोया इस पर आमिल दोबारा दाखिल हो रहा है। लेकिन यहां पर या अल हसन कहना तो जायज ही नहीं है, क्योंकि अल हसन मुअर्रफ बिल्लाम है, उस पर अलिफ लाम है, और मुअर्रफ बिल्लाम पर तो हर्फ निदा दाखिल नहीं हो सकता भाई। तो लिहाजा साहिब काफिया ने ये जो मातूफ ब हर्फ है इसकी दो किस्में बना दी, एक वो मातूफ ब हर्फ है जिस पर या का दाखिल करना जायज था, एक वो मातूफ ब हर्फ है जिस पर या का दाखिल करना जायज नहीं। तो कुल तवाबिया कितनी किस्में बना दी साहिब काफिया ने, छह किस्में। इन छह में से चार का हुक्म वो पहले बयान करेंगे और दो का हुक्म बाद में। किन दो का हुक्म बाद में बयान करेंगे, वो जो बदल है और वो मातूफ ब हर्फ जिस पर या का दाखिल करना जायज है। कौन कौन? एक बदल और एक वो मातूफ जिस पर या का दाखिल करना जायज है, जैसे यहां आया या जैद व अमरु, तो ये जो मातूफ बहरफ है जिस पर या का दाखिल करना जायज है, और इसी तरह ये जो बदल है इनका हुक्म बाद में बयान करेंगे, और बाकी चार जो तवाबिया हैं उनका हुक्म पहले बयान करेंगे। कौन कौन से? ताकीद, सिफत, अथवे बयान, और वो मातूफ बहर्फ जिस पर या का दाखिल करना मुमतन्या है, इन चार का हुक्म पहले बयान करेंगे। बात समझ में आ गई? देखिए भाई दोबारा मतन कहते हैं, व तवाबिउल मुनादल मबनी यिल मुफरदतु, और मुनादा मबनी के वो तवाबिउ जो मुफरद हो, जो मुफरद हो। मुफरद यहां मुजाफ और मुशाबे मुजाफ के मुकाबले में आया है। तो मुनादा मबनी के वो तवाबिया जो मुफरद हो, मीनत ताकीदी, यानी के ताकीद है, व सिफती, और इसी तरह सिफत है, व अत्फिल बयानी, और अत्फे बयान जो है, वल मातूफ बि हर्फ निल मुमतनी दुखूलु या अलैही, और वो मातूफ ब हर्फ के मुमतने हो उस पर या का दाखिल होना, तुरफाऊ, याद रखो ये जो चार किस्में हैं तवाबिया की, इनमें इधर देखिए, इन में जो ताबिया है उस पर रफा पढ़ना भी जायज और नसब पढ़ना भी जायज। जैसे या जैदो, यह मुनादा मुफरद मारिफा है, इसकी सिफत अल आकिल में लाता हूं, तो इस अल आकिल पर रफा भी जायज और नसब भी जायज है। या जैदुल आकिलो, या यूं पढ़ें या जैदुल आकिला, दोनों तरह जायज है। बात समझ में आ गई? तो ये जो चार तवाबिया हैं, तुरफाऊ अला लफ्जिही व तुनसबू अला महल्लिही, ये मरफू होंगे, ये मरफू होंगे मुनादा के लफ्ज पर हमल करते हुए, और ये मनसूब होंगे मुनादा के महल पर हमल करते हुए। इन पर रफा भी जायज, नसब भी। भाई रफा क्यों जायज और नसब क्यों जायज, उसकी वजह भी आपको बतलाएंगे। कहते हैं नसब तो इसलिए जायज है, कहते हैं क्योंकि इसके महल पर हमल किया। किसकी बात चल रही है? वो मुनादा जो मबनी होता है, और मबनी का जो ताबिअ होता है वो उसके महल के ताबे होता है। किसके? महल के ताबे होता है। जैसे देखिए भाई, हाजल किताबु लिज़ैदिन, ये किताब जैद की है। ये तरकीब किस तरह है? हाजल किताब ये मौसूफ सिफत है और ये मिलकर मुबतदा, और लिज़ैदिन ये जार मजरूर, ये उसकी खबर है, ये मुतालिक होगी किससे? साबितुन से। तो ये साबितुन से जार मजरूर है ना, उसके लिए हमेशा कोई ना कोई मुतालक चाहिए, और यहां और मुतालक इबारत में जिक्र ना हो तो महजूफ निकालते हैं, तो ये मुतालिक होगा साबितुन से। ऐ हाजल किताबो साबितुन लिज़ैदिन जी। अब देखो, हाजल किताबो, हाजा है मौसूफ और अल किताब है उसकी सिफत, और आपने पढ़ा मौसूफ सिफत का एराब एक होता है, तो अब अल हाजा इस पर तो कोई एराब हमें नजर नहीं आ रहा, और अल किताब इस पर हम रफा पढ़ रहे हैं। क्यों? वजह यह कि ये अल किताब ताबे है हाजा का, हाजा मौसूफ है और ये ताबे, और ताबे पर वही अराब आता है जो मतबू पर हो, और यहां पर हाजा मरफू है क्योंकि मुबतदा है, मुबतदा है। और एराब कभी लफजन आता है, कभी तकदीरन और कभी महलन। लफजन और तकदीरन एराब किस में आएगा? मुआरब में। और महलन एराब किस में आएगा? मबनी में। तो ये हाजा महलन मरफू है, महलन मरफू है। और अल किताब इसकी सिफत, और सिफत पर वही अराब आता है जो मौसूफ पर, और मौसूफ तो मबनी है तो उसके महल के ताबे है ये सिफत भाई। और महलन हाजा मरफू है तो अल किताब भी मरफू है। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ मबनी का जो ताबे होता है वो उसके महल के ताबे होता है। महल यानी जगह के एतबार से जो एराब होता है वही एराब आगे ताबिया पर भी आता है। तवज्जो है, क्या बात हुई? हाजल किताब, यह अल किताब पर रफा क्यों आया? क्योंकि यह सिफत है हाजा की, और हाजा पर तो हमें कोई एराब नजर नहीं आ रहा तो, क्योंकि वो तो मबनी है, मबनी पर तो एराब जाहिर नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे कि वो महलन मरफू है क्योंकि मुबतदा है, तो ये जो सिफत है ये उसके महल के ताबे है, लफ्जों के ताबे नहीं। लफ्जों में तो वो मबनी है तो फिर तो सिफत को भी मबनी होना चाहिए, लेकिन ये लफ्जों के ताबे नहीं बल्कि महल के ताबे है, और महल के एतबार से वो मरफू है क्योंकि मुबतदा है, तो सिफत भी मरफू। तो हासिल कलाम क्या कि मबनी का जो ताबे होता है वो उसके महल के ताबे होता है, महल के मुताबिक उस पर एराब आता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी, यहां पर भी या ज़ैदु, ये जैद मबनी है और इसकी सिफत में आगे अल आकिल लाना चाहता हूं। ये जैद मबनी अला जम है तो मबनी, और मबनी के लिए कोई ना कोई महल एराब होता है। और ये या जैद किस माना में है? अदउ जैदन के माना में है, यानी ये महलन मंसूब है, मफूल भी ही है। तवज्जो है? तो या जैद, ये जैद के लिए महल एराब क्या है? ये मंसूब है, मफूल भी ही है, लिहाजा इसका जो ताबिया लाएंगे वो भी मंसूब लाएंगे। तो या जैदुल आकिला, देखा नसब इसलिए पढ़ा, वजह समझ में आई? मुनादा मुफरद मारिफा, यूं कहूं वो मुनादा वो जो मबनी हो अलामत रफा पर उसके ताबिया पर, रफा पढ़ना भी जायज और नसब पढ़ना भी जायज। या जैदुल आकिलो और या जैदुल आकिला। अब अल आकिला क्यों पढ़ा? वो वजह मैंने जिक्र कर दी। या जैदुल आकिला ये नसब क्यों पढ़ा सिफत पर? क्योंकि ये सिफत है और सिफत मबनी के महल के ताबे होती है, और जैद बेशक मबनी है लेकिन महल के एतबार से मंसूब है, मफूल भी ही है अदरूफिल के लिए। तो यहां ताबे पर नसब क्यों जायज? मबनी के महल पर हमल करते हुए। और नीज इसी सिफत पर रफा पढ़ना भी जायज। या जैदुल आकिलु, रफा पढ़ना भी जायज किस पर हमल करते हुए? इसके लफ्जों पर हमल करते हुए। किस पर? लफ्जों पर। या जैदुल आकिलु, ये अल आकिलु पर रफा क्यों है? कहते हैं हमने जैद के लफ्जों पर हमल किया। भाई लफ्जों पर कैसे हमल कर लिया? जैद तो मबनी है, जैद मबनी। मैंने आपको बताया तीन किस्म के नाम है, जम्मुन फतहुन कसरुन, और एक सूरत है गोलता भी साथ मिला दें, जम्मतुन फतहतुन कसरतुन, और एक है रफुन नस्मुन जरुन। तो जम्मुन फतहुन कसरुन बगैर ता के हो तो ये मबनी के साथ खास, और गोलता साथ जोड़ दें जम्मतुन फतहतुन कसरतुन तो ये मौरब और मबनी दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और रफुन नस्मुन जरुन ये मौरब के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो या जैदु, जैद तो मबनी है, और मबनी है किस पर? मबनी अला जम, तो जैद पर तो जम्मा है, वो तो मबनी है। और आगे अल आकिलु सिफत आ रही है, और अल आकिल सिफत पर ये तो रफा है भाई, जैद पर जम्मा है वो मबनी है, और अल आकिलु पर रफा है। फर्क समझ में आ रहा है? तो आपने क्या कहा कि अल आकिल पर हमने रफा क्यों पढ़ा? हमने जैद के लफ्जों के ताबे कर दिया। भाई लफ्जों के ताबे कैसे कर दिया? जैद पर तो रफा है ही नहीं, जैद पर तो जम्मा है, वो तो मबनी है भाई। तवज्जो है कि नहीं? बात समझ में आई? जैद पर तो जम्मा है, उस पर तो रफा है ही नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपने उसके लफ्जों के ताबे कर दिया? लफ्जों के ताबे तो आप तब कहते जैद पर भी रफा होता, जैदुन तनवीन आ रही होती, आगे अल आकिलु पर भी आप उसके मुताबिक रफा पढ़ देते भाई। तो एतराज समझ में आया? ये आपको बतलाएंगे कि भाई ये जो या जैदुल आकिलु वल आकिला, ये जो नसब पड़ा है ये नसब किस पर हमल करते हुए, मबनी के महल पर हमल करते हुए, और महल के एतबार से जैद मनसूब है। और ये जो या जैदुल आकिलु, ये जो अल आकिलु सिफत पर ताबिया पर जो रफा पड़ा वो जैद के लफ्जों पर हमल करते हुए, इस पर इश्काल होता है कि लफ्जों के एतबार से तो जैद मबनी है, उस पर तो रफा है ही नहीं, तो फिर ताबिया पर रफा कहां से आ गया? इश्काल समझ में आया? तो उसका जवाब देंगे साहिब जामी कि भाई जैद पर यह जो जम्मा आया है, ये जो जैद मबनी अला जम हुआ या जैदु, तो ये जैद हमेशा ही मबनी होता है या यहां पर आमिल की वजह से मबनी बन गया? यहां आमिल की वजह से मबनी बन गया। भाई जैद का लफ्ज हमेशा तो मबनी नहीं होता। जा अनी जैदुन, रअयतु जैदन, मररतु बि जैदिन, जैद तो मुअरब है। हां यहां पर ये जो मबनी बना है और इस पर जो जम्मा आया है वो किसकी वजह से आया है? आमिल की वजह से आया है। तो गोया ये जम्मा भी रफा की तरह ही हुआ, जैसे रफा आमिल की वजह से आता है, ये जम्मा भी यहां आमिल की वजह से आया है। वैसे तो मबनी जिस हरकत पर भी मबनी हो, चाहे जम्मा हो, चाहे फतहा हो, चाहे कसरा हो, वो आमिल की वजह से नहीं होता, लेकिन यहां पर जो जैद पर बिना आई है वो मुस्तकिल बिना नहीं, वो आमिल की वजह से बिना आई है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये जो बिना है ये आरजी बिना है, मुस्तकिल बिना नहीं। तवज्जो है? तो कहते हैं कि भाई ये जो जैद मबनी हुआ है ये हमेशा मबनी नहीं होता, ये बिना इसको आरिज हुई है। या यूं कहो ये जो जैद मबनी अला जम हुआ है तो ये जम्मा इस पर आरजी है, जैद हमेशा मबनी नहीं होता। तो ये बिना और ये जम्मा आरजी है, तो ये भी एराब की तरह है। जैसे एराब आमिल की वजह से कभी रफा आता है, कभी नसब और कभी जर, तो ये जो बिना आरिज हुई है मुनादा मुफरद मारिफा को, ये बिना भी आरजी है भाई, तो ये भी एराब की तरह हुई। यूं को ये जो जम्मा है ये रफा जैसा ही है भाई, ये बिना आरजी है, यानी मबनी अला जम होना आरजी है। जैसे मौरब पर आरजी तौर पर कभी रफा आता है, कभी नसब और कभी जर, तो यहां पर ये मबनी अला जम होना ये भी आरजी है। तो यूं कहो कि ये जम्मा किसकी तरह हुआ? रफा की तरह हुआ। तो लिहाजा इसके लफ्जों पर हमल करते हुए इसके ताबिया पर भी रफा पढ़ दिया गया। ये तो मुनादा खुद तो मबनी अला जम, लेकिन यह जम्मा किसकी तरह? रफा की तरह, लिहाजा इसके ताबिया को लफ्जों के ताबे करते हुए उस पर रफा पड़ा जाता है। बात समझ में आ गई? देखिए भाई किताब पर। तो कहते हैं ये जो चार किस्म के तवाबे हैं, तुरफाउ अला लफ्जी ही, इन पर रफा पड़ा जाएगा मुनादा के लफ्जों पर हमल करते हुए, यानी उस पर जो जम्मा आया है वो भी रफा ही की तरह है भाई। व तुन सब अला महल्ली ही, और ये जो तवाबे हैं इन पर नसब पड़ा जाएगा अला महल्ली ही, मुनादा के महल पर हमल करते हुए, मिसलु मिसाल के तौर पर या जैदुल आकिलु वल आकिला। तो यहां पर मुनादा जो मबनी अला जम है उसके तवाबे पर रफा पढ़ना भी जायज और नसब पढ़ना भी जायज। कौन से तवाबे? ये जो चार जिक्र हुए, ताकीद, सिफत, अथवे बयान, और वो मातूफ बाहर जिस पर या का दाखिल होना मुमतना है भाई। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम क्या कि आज हमने मुनादा मबनी के वो तवाबे जो हैं, जो मुफरद हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, और आपने पढ़ा कि तवाबे जो हैं वो पांच हैं। एक सिफत है, ताकीद है, मातूफ बहर्फ है, बदल है, और अथवे बयान। फिर इनमें से मातूफ बहर्फ जो है वो दो किस्म पर है, वो या तो मुआर्रफ बिल्लाम होगा या मुआर्रफ बिल्लाम नहीं। मुआर्रफ बिल्लाम है तो उस पर या का दाखिल करना मुमतने है, और अगर मुआर्रफ बिल्लाम नहीं तो उस पर या का दाखिल करना जायज है। तो कुल गोया ये तवाबे की छह किस्में बना दी। इन छह किस्मों में से फिर तकसीम किया और इनमें से चार का हुक्म अलग बयान किया और फिर दो का हुक्म बाद में बयान करेंगे। पहले चार जो हैं कौन कौन से? ताकीद जो है, और इसी तरह सिफत है, और अथवे बयान है, और वो मातूफ जिस पर या का दाखिल करना मुमतने है। ये जो चार तवाबे हैं मुनादा मबनी के, इन पर रफा पढ़ना भी जायज लफ्जों पर हमल करते हुए। मुनादा के लफ्जों पर हमल करते हुए, इसलिए क्योंकि मुनादा पर जो जम्मा आया है वो आरजी है, जैसे आमिल की वजह से रफा नसब और जर आते हैं, इसी तरह यहां पर भी आमिल की वजह से जम्मा आया है, तो ये जम्मा आरजी है, तो ये जम्मा भी रफा के मिसल हुआ। जैसे रफा किसकी वजह से आता है, आमिल की वजह से, इसी तरह ये जम्मा भी आमिल की वजह से आया है, तो ये जम्मा भी रफा की तरह ही हुआ। तो इस मुनादा के लफ्जों पर हमल करते हुए इसके जो ये चार तवाबे हैं उन पर रफा पढ़ना भी जायज, और नीज इस मुनादा के महल पर हमल करते हुए इसके जो तवाबे हैं उन पर नसब भी जायज है। तो या जैदुल आकिलु और इसी तरह या जैदुल आकिला दोनों पढ़ना जायज है। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।